ओम शांति। सभी रिफ्रेश होकर के आए हैं, एक घंटा और सुन सकते हैं। तो अभी हमारे बीच में साकार पालना लिए हुए एक और अनन्य रत्न वरिष्ठ भ्राता मोहन सिंघल जी हैं। एक हाथ की ताली से हम स्वागत करते हैं। भ्राता जी साइंटिस्ट और इंजीनियर विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप एकेडमी के प्रोग्राम्स के भी, ज्ञान सरोवर एकेडमी के प्रोग्राम्स के भी आप कोऑर्डिनेटर हैं। राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के ट्रस्टीज के भी आप मेंबर हैं और अनेक जो अभियान होते रहते हैं समय प्रति समय, विशेषकर साइंटिस्ट इंजीनियर विंग से संबंधित, उनको आप ऑर्गेनाइज करते हैं। खासकर आपने पर्यावरण सुरक्षा अभियान 6-7 निकाले हुए हैं, जिसके लिए आपको पर्यावरण श्री अवार्ड भी मिला था 1992 में। यूथ के लिए भी आपने अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के समय जो पदयात्रा निकली थी, उस पदयात्रा में 12 पदयात्राओं का आपने व्यवस्थापन किया बहुत कुशलतापूर्वक। वैसे आप 1962 में ज्ञान में आए, लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया और फिर इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस धनबाद से आपने मास्टर्स डिग्री लेकर के ONGC में सुपरिटेंडेंट जियोफिजिसिस्ट के रूप में 28 वर्षों तक कार्य किया और उसके बाद वहां से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर आप 1996 से यहां हेडक्वार्टर में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत ही नम्र, मृदुभाषी, सरल व्यक्तित्व है आपका। अपने चलन के द्वारा सेवा करते हैं और अभी हम सुनेंगे प्रकृति जीत कैसे बने। माया जीत बनने का तो हमारा अटेंशन होता है लेकिन प्रकृति जीत बनने का ज्यादा अटेंशन नहीं होता है, लेकिन हमें प्रकृति जीत भी बनना है तो उसकी विधि क्या है वो गहराई से हम सुनेंगे आज भ्राता जी से।
ओम शांति। एक बार हम सभी मिलकर के उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसा हम सबने सुना है। ब्रह्मा बाबा के साथ सभी ब्राह्मण वत्स मिलकर बोला करते थे, अंदर गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को छोड़ते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और दूसरी श्वास लेकर उसको छोड़ते हुए शांति की ध्वनि। जहां पर भी जीत शब्द आता है, विजय आता है शब्द, तो वहां क्या अनुभव होता है? खुशी का, आनंद का और उमंग, उल्लास। आज बाबा ने आज की मुरली में भी यही कहा ना, क्या कहा इस रेफरेंस में? हरेक को उमंग उल्लास में का अनुभव कराते चलो और उमंग उल्लास खुद भी रहे और दूसरों को भी उमंग उल्लास में लाते चले। एक तो बाबा ने ये कहा और क्या कहा शुरू शुरू में ही? क्या कहा बाबा ने? कौन सा शब्द बोला जो यज्ञ के शुरू में कहा करते थे? एक रस और प्रिय निज आत्मा। क्या मतलब है इसका? यहाँ पर तो जो बैठे हैं कोई उस समय तो था नहीं जब बाबा बोला करते होंगे, या आपस में सब दादियां बोला करते होंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है? प्रिय निज आत्मा, क्या मतलब होगा इसका? निज, मैं तो ये समझता हूँ, पूछा मैंने तो, निज माने पर्सनल, भाई ये मेरा निजी सामान है कहते हैं ना। तो हर आत्मा जो है ना, हरेक के संस्कार अलग अलग हैं, निजी है, कोई एक का संस्कार न मिले दूसरे से, लेकिन हरेक आत्मा प्रिय है, प्रेम स्वरूप है। वैसे भी कहा जाता है सोल को जब डिफाइन किया जाता है आत्मा को, तो उसके क्या मीनिंग बताते हैं? SOUL यानी सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव। भले आत्मा के सात गुण हैं, लेकिन प्रेम स्वरूप एक ऐसा गुण है जो आत्मा का मुख्य गुण है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में भी कहा गया है क्या, राग और द्वेष दो चीज होती है। तो जहां राग यानी कि प्रेम स्नेह, और द्वेष तो सब जानते ही हैं नेगेटिविटी उसका, तो इसीलिए राग और द्वेष ये दोनों ही जो है अति में खराब है। उसका भी बाबा ने बड़ा अच्छा आज की मुरली में बताया, क्या सबको सहारा दो, मदद करो, लेकिन मतलब भाव ये है अपने से अटैच नहीं करो, क्योंकि अभी जो समय आ रहा है और अभी जो समय है, जो आत्माएं आएंगी, बहुत कमजोर आत्माएं आएंगी अधिकतर, और जब कमजोर आत्मा आएंगी, बाबा ने कहा है उन्हें चलने के लिए टांग भी तुम्हें देनी पड़ेगी, देखने के लिए आंख देनी पड़ेगी, सुनने के लिए कान देने, यानी कि वो आत्माएं आएंगी तो प्रिय ज्ञान को सहज रीति से पचा नहीं सकेंगी, अंतिम समय की आत्माएं आएंगी। तो इस कारण से बाबा ने क्या कहा, वो आत्माएं जब ज्ञान में सुनेंगी बहुत अच्छा लगेगा उन्हें, हम ज्ञान सुनाएंगे तो वो हमें ही अपना सब कुछ मान बैठेंगे, भई हमारे लिए, हम जितना भी कहेंगे भई सेंटर चलो, मधुबन चलो, बाबा को, शिव बाबा को याद करो, अभी भी बहुत आत्माएं मिलती हैं कहते नहीं हमारे लिए तो आप ही बाबा हो, आप ही भगवान हो। वो क्यों? क्योंकि कमजोर आत्माएं हैं, और अति कमजोर आत्मा होने के कारण ना परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन वो नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा तो सागर है, शक्ति का सागर हर चीज का, इसीलिए थोड़ा थोड़ा वो चैनल जो बीच में है, जैसे भक्ति में भी गुरु को सम्मान बैठे हैं, गुरु के प्रति श्रद्धा हो गई है, इस कारण से वो अभी भी जो आत्मा आएंगी वो यही कहेंगे आप ही हमारे लिए सब कुछ हो, आप ही हमें दो शब्द सुना दो, उसी से ही हमें तृप्ति होगी। तो ऐसी आत्माओं को भी चलाना हम बच्चों का कर्तव्य है। कहां एक तरफ एकदम वारिस आत्माएं, और कहां ये अति कमजोर आत्माएं भी वो आएंगी, और इसीलिए ये विषय भी ऐसा है प्रकृति जीत भवा, क्योंकि हमें तो वो प्रकृति के रूप में ही देखेंगे ना, शरीर ही देखेंगे, और इस कारण से वो शरीर के आधार पर ही वो आत्माएं चलती रहेंगी। इसीलिए अभी देखना ये है हम कैसे प्रकृति जीत बने, और प्रकृति जीत इसलिए भी बनना जरूरी है कि अंत में जब आत्मा शरीर छोड़ेगी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके, फरिश्ता रूप स्थिति बना करके आत्मा जब जाएगी तो क्या होगा, जब ये आत्मा शरीर छोड़ेगी और उसी का ही गायन है, क्या गायन है, अंतमते सोगति का गायन, अंत में जैसी हमारी मति होगी वैसी ही हमारी गति होगी। जितना भी हमने पुरुषार्थ किया हो, 50 साल से ज्ञान में हो, लेकिन अंत समय अगर बुद्धि इधर उधर चली गई तो वो गति नहीं होगी जो गति बाबा चाहता है। एकदम ऐसी गति कि कोई भी और अंत समय याद ना आए, तो उसके लिए क्या करेंगे? जबकि बाबा ने एक तरफ तो ये बता भी दिया है भारत में क्या क्या परिस्थितियां होंगी। अति में प्रकृति जाएगी, जितने 5 तत्व हैं ये अति हलचल में होंगे। जमीन अति हलचल में, अर्थक्वेक के रूप में, जल जो है कहीं सुनामी के रूप में, कहीं बाढ़ के रूप में, पानी के रूप में, कहीं क्लाउड बर्स्ट बादल फटने के रूप में जल का, इसी तरह अग्नि, सूर्य की गर्मी, बहुत कुछ, वायु के भी साइक्लोन के रूप में। तो जब अति होगी ऐसे समय हम कैसे अति हलचल में अति अचल रहे? रहने का तो बाबा कहते हैं, लेकिन कैसे रहें उस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। अति हलचल होगी लेकिन अति अचल हमारी स्थिति हो, अंदर बाहर अति हलचल, अंदर अति अचल। तो इसके लिए और क्या करेंगे? तो ये जब चारों तरफ ये तत्व तो अपनी हलचल मचाएंगे ना, तो ऐसी कोई विधि हो जो ये जब कोई आपदा आने वाली है तुरंत उससे कुछ पहले ही हमें आभास हो जाए कि हाँ अब ये बाबा सिग्नल भेजे, और उस समय ऑटोमेटिकली हमारे पैर उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। ये बाबा ने कहा है, बाबा का कमिटमेंट है। लेकिन ये कब होगा? जब ये जो तत्व है ना, इन तत्वों को हम अपना मित्र बना लेंगे। अभी तो तत्व भी जो है मित्रता खत्म, सतयुग में बहुत मित्र थे, ये जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश जिनसे ये शरीर बना हुआ है बहुत मित्र थे, तो कभी भी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, ना बीमारी होती थी, ना दर्द होता था, कष्ट कुछ भी नहीं। जन्म और मृत्यु के समय भी बिल्कुल एकदम खुशी खुशी आत्मा आती थी, किस प्रकार से बाबा ने सब बताया हुआ है। और जाएंगे उससे पहले भी आभास हो जाएगा सतयुग में कि हाँ अब हम ये पुराना चोला बदल कर नया चोला ले रहे हैं। तो वो स्थिति हमारी यहां पर भी हो, क्योंकि यहीं से ही तो हम संस्कार लेके जाएंगे अंतिम समय में, और उसी को ही बाबा ने कहा है कौन सी अवस्था? कर्मातीत अवस्था। हमें याद है जब मामा ने शरीर छोड़ा था तो बाबा ने मामा ऊपर गई तो बाबा ने कहा, पूछा, मामा आपने, शिव बाबा ने सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा के द्वारा, कि मामा आपने कर्मातीत स्थिति का अनुभव किया क्या शरीर छोड़ते समय? तो मामा ने कहा कि नहीं बाबा। तो अच्छा बच्ची जाओ और अनुभव करके आओ कि कर्मातीत अवस्था क्या होती है। तो मामा ने कहा ठीक है बाबा। मामा गई और कुछ समय बाद फिर जब वतन में लौटी तो बाबा ने पूछा, बच्ची अनुभव किया क्या? कि नहीं बाबा। क्यों? कि बाबा जब मैं शरीर में गई तो शरीर तो ठंडा पड़ चुका था बिल्कुल, उसमें कोई भी चुरपुर नहीं हुई, हलचल नहीं हुई, इसीलिए उसका चेतनता का अनुभव नहीं कर सके। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्ची, अब बाबा तुम्हें भेजेगा दूसरे शरीर में अनुभव करना। तो अभी जिस भी रूप में हो मामा, अभी तो बहुत कितने साल की हो गई होगी, 45-50 साल की तो 52 के करीब होगी। तो ये मतलब उस वक्त का था, ब्रह्मा बाबा का क्या अनुभव था कर्मातीत स्थिति का, क्योंकि अभी तक तो अकेले ब्रह्मा बाबा ने ही प्रकृति जीत बन करके गए हैं, एक ही आत्मा। मामा ने तो कहा कि नहीं, और बाबा बन के गए तो दो तीन दिन पहले, चार पांच दिन पहले की भी बाबा की एक मुरली थी ना, रिवाइज कोर्स की अव्यक्त की, उसमें बाबा ने अंतिम स्थिति का पूरा वर्णन किया था, लास्ट संडे की मुरली। याद है किसी को क्या किया था? एक पैरा पूरा था कि अंतिम जब स्थिति थी तो युद्ध चल रहा था, एक तरफ कर्म भोग का युद्ध, एक तरफ योग बल का। पूरा जितना भी सारे हिसाब किताब तो कट चुके थे, लेकिन अंत में जो भी हिसाब थे तो दोनों का युद्ध चल रहा था। एक तरफ अति पेन हो रहा था, क्योंकि मुझे एक सौभाग्य है कि 18 जनवरी को 1969 जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो मैं यहीं पर ही था मधुबन में, और अपनी आंखों से कर्मातीत अवस्था देखने का मुझे मौका मिला, तो वो भी हम आपस में शेयर करेंगे। तो युद्ध चल रही थी, एक तरफ अति हलचल, बहुत पेन भी हो रहा था, एक तरफ अनुभव हो रहा था कि मेरे सारे जन्म जन्मांतर के विकर्म बचे हुए जो रह गए वो सब कट रहे हैं, और शुरू में तो भोग बल ये बहुत ज्यादा तीव्र था, यानी दर्द की अनुभूति जो ये ज्यादा तीव्र थी, लेकिन धीरे धीरे वो कमजोर पड़ता चला गया, योग बल आगे बढ़ता चला गया, फिर जैसे मक्खन से बाल की तरह आत्मा उड़कर चली गई। तो ये अंतिम समय हमारा लक्ष्य बस यही होना चाहिए पूरे पुरुषार्थ का, कि बस अंतिम समय जब आत्मा शरीर से निकले उस वक्त हमारी क्या जो भी परिस्थितियां हो बिल्कुल हमारी कर्मातीत अवस्था बनने के अनुकूल हो। तो उसी विषय पर आज हम विचार करेंगे कि प्रकृति जीत कैसे बने। तो ये जो है स्थिति लाने के लिए, एक तो ये जो पांच तत्वों से बना शरीर है, और इसमें और जन्मों का तो मालूम नहीं रहता, लेकिन इस जन्म का ही मालूम है, जो भी हमारी आयु है 25, 50, 60, 80, 100 वो सब, तो उसमें आत्मा ने इतने कम समय में ही इस शरीर से इतने संबंध बना लिए हैं कि सहज रीति से ना आत्मा नहीं निकल पाती। लौकिक में भी कई बार होता है ना कि जिससे कोई आत्मा बिल्कुल बीमार पड़ी है, जाने लायक है, लेकिन आत्मा शरीर नहीं छोड़ रही है, मरने जैसा है लेकिन फिर भी खींच रहा है, तो फिर क्या कहते हैं भाई, इसके प्राण कहीं अटके हुए हैं। हाँ, फिर जब कोई भी जिसमें होते हैं, बेटा हो कोई भी हो, वो आता है देखा, और उसके बाद वो आत्मा चली जाती है। तो कहीं पर भी हमारी भी हमारी ऐसी स्थिति ना, हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े जैसे भीष्म पिता ने मैंने छोड़ा, तो उसके लिए क्या है, ये जो पांच तत्व है ना, इनको हम अपना मित्र बना ले, अनुकूल बना ले, ये तत्व हमारे कहने पर पूरा चले। तो कैसे होगी हमारी मित्रता इनसे? ये मित्रता किनके बीच में होती है? जिनके संस्कार लगभग एक जैसे होते हैं। देखो क्लास भी रोज आप सुनते होंगे अपनी जगह, तो क्लास सुनते ही मुरली पूरी होती है, उसके बाद क्लास से बाहर निकले तो सब अपना अपना घरों में जाते हैं, फिर भी दो चार वो आपस में मिलके कुछ एक्सचेंज करते हैं, बातें करते हैं, जो भी कि भाई जिनके संस्कार काफी मिलते जुलते हैं, फ्रेंडशिप होती है आपस में। ऐसे ही हम इन तत्वों को अपना मित्र बना लें, तो ये तत्व अंत समय में हमारे लिए बहुत बहुत सहयोगी बन जाएंगे। उदाहरण के तौर पे मानो जल तत्व है, हम अपने संस्कार को जल तत्व के संस्कार के अनुरूप कैसे बनाएं? जल तत्व का मुख्य संस्कार कौन सा है? गुण, शीतलता। और भी है, बहुत सारे हैं, एक ये है एडजस्टमेंट का, फ्लेक्सिबिलिटी। देखो गिलास में लो, गिलास में आ जाएगा जल, कटोरी में लो, कटोरी में, चम्मच में लो, चम्मच में, थाली में लो, थाली, हर जगह वो एडजस्ट हो जाता है। ऐसी अगर हमने अपना संस्कार ऐसा बनाया होगा कि हम हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होके चल सके, ये न कहें कि इनके साथ एडजस्ट होके चलना बड़ा मुश्किल है, हाँ उनके साथ तो चल सकते हैं, नहीं हर एक के साथ इतनी एडजस्टमेंट हो, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो, इतना हमारा अपने संस्कारों के ऊपर कंट्रोल हो, तो क्या होगा, वो जो एडजस्टमेंट का संस्कार है जल का, वो हमने अगर धारण कर लिया तो ये जल का ये संस्कार जो है हमें अंत समय बहुत बहुत मदद करेगा, क्योंकि हमने फ्रेंडशिप कर ली, उसके अनुरूप अपने को ढाल लिया। और संस्कार क्या है, आपने देखा ना, बस जल जैसे बहता है और जितना बहता जाता है उतना स्वच्छ माना जाता है, और जब अगर रुक जाता है स्टैग्नेट तो क्या होता है, गंदा, कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर पैदा हो जाएंगे, बदबू पैदा हो जाएगी, उसे स्वच्छ नहीं मानते। ऐसे हमने अगर जल का ये संस्कार धारण करा हो कि हम हर परिस्थिति में आगे बढ़ते चले, जल के सामने बड़ा पत्थर भी आएगा, कुछ आएगा, वो घूम घाम के इधर उधर रास्ता बना के निकल जाएगा, तो कोई भी प्रॉब्लम, समस्या, पेपर, परिस्थितियां, उनके से हम रुके नहीं, हम अपना रास्ता बना के आगे चलते चले। और अगर कहीं हमें ये महसूस होता है लाइफ में कि हमारी स्पीड कम हो गई है या रुक गए हैं हम, उसकी पहचान क्या है कि उसकी पहचान है कि कहीं पर भी ना हमारे अंदर भी ये मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े पैदा होने लगेंगे, यानी कहीं ईर्ष्या, कहीं घृणा, कहीं बदले की भावना, कहीं निगेटिविटी, ये सब अपने अंदर हमारे अंदर धारण होने लगेगी, तो क्या होगा, इसका मतलब हमारा आगे बढ़ना जैसे कि रुक गया है। और आगे बढ़ना अगर रुक गया है और ये चीज पैदा हो रही है तो तुरंत हमें अपने अंदर चेक करना चाहिए, ये संस्कार तो मेरा जल के अनुकूल नहीं है। और अगर जल के अनुकूल संस्कार बनाने का भाव क्या है, जल भी जैसे ना भाई बताया, हाँ जल में और क्या क्या संस्कार होते हैं, जल में देखो जब ट्रांसपेरेंसी होगी, साफ जल होगा, उसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, उसे हम नीचे तक देख सकेंगे, कोई चीज नीचे है, ऐसे हमारा जीवन भी ऐसा हो, पारदर्शी हो, ऐसा नहीं कि किसी के सामने कैसा, किसी के सामने कैसा, नहीं पारदर्शी। गांधी जी कहा करते थे, मेरे जीवन तो खुली किताब की तरह है, कोई भी पढ़ सकता है, ऐसी हमारी लाइफ भी ट्रांसपेरेंट हो। जितनी पारदर्शी जीवन होगा उतना जल के अनुरूप हमने अपने संस्कारों को ढाल लिया। और जल का क्या संस्कार है, शीतलता, ये उसका ओरिजिनल संस्कार है, आग पे रख दो उबल जाएगा, लेकिन अगर उसे अपने ओरिजिनल संस्कार में लाना हो तो क्या करना पड़ेगा, आग से बस उतार देना पड़ेगा और कोई मेहनत नहीं करनी। ऐसी हमें देखना है कि अगर कभी कोई मानो विपरीत परिस्थितियों के वशीभूत होके हमें क्रोध आ गया, अहंकार में आ गए, कोई भी विकार के वशीभूत हो गए, तो क्या उसमें और समय न गंवाए, जैसे ही महसूसता हुई ये हुआ तुरंत ही हम उस परिस्थिति से अपने को अलग कर लें, जो परिस्थिति ने ये पैदा किया है, फिर ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद आत्मा ओरिजिनल संस्कार में आ जाएगी, जो उसका शीतलता का संस्कार है। तो इस तरह हर तत्व के 5-6 गुण निकालेंगे तो क्या होगा, यही तत्व जो है, चूंकि इनसे हमारी मित्रता हो गई, तो अंत समय में ना कहते हैं ना, ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, मित्र समय पर मित्र की सहायता करता है। तो इस तत्व को अगर मित्रता को इसे उनसे बना ली तत्व से, तो अंत समय में जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आई मानो सुनामी की, कहीं बाढ़ की, फ्लड की, तो क्या होगा, पहले से ही हमें टच हो जाएगा। बाबा ने कहा है जिनकी लाइन क्लीन और क्लियर होगी, बाबा बंधा हुआ है उन बच्चों की रक्षा के लिए, और उनके पांव ऑटोमेटिकली वहां बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, सोचना नहीं पड़ेगा। कई उदाहरण है हमारे सामने, चाहे लातूर का हो, अर्थक्वेक का, चाहे कच्छ भुज का हो, बहुत अनेक अनेक, चाहे भोपाल गैस ट्रेजेडी का हो, कि बस कैसे ऑटोमेटिकली टच होता है और तुरंत वो कदम उठाते हैं, हमारी सेफ्टी सुनिश्चित हो जाती है। तो इस कारण से ये प्रोवाइडेड क्लीन और क्लियर नेचर हो, और क्लीन नेचर तब होगी जब जिस तत्व की हमें हेल्प की जरूरत है उस तत्व को हमने अपना मित्र बनाया होगा, वो समय पर हमें जैसे ही राइट टचिंग आएगी हमारे पैर ऑटोमेटिकली सेफ्टी की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जैसे जल तत्व का आपने सुना, हाँ, चार पांच गुण याद रहेंगे ना सब, तो उन जैसा उनके गुण है वो हम अपने में धारण करते चलें, तो समय पर यही जल तत्व हमारी प्राण रक्षा के निमित्त बनेगा, ऑटोमेटिकली वहीं आगे बढ़ेगा। और क्या है, पृथ्वी है, मानो बाबा ने तो बताया ना, भले बंबई वाले और जो ऐसे हैं समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे, वहां तो बहुत जल का परीक्षा सबसे बड़ी होगी, नहीं तो अधिकतर पृथ्वी की क्या परीक्षा, अर्थक्वेक के फॉर्म में, भूचाल के फॉर्म में। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण क्या है, सहनशीलता। पृथ्वी का एक बड़ा गुण है दातापन का, पृथ्वी दाता है, हर चीज देती है। देखो पृथ्वी से ही अन्न पैदा होता है, सब्जी है, फल फूल है, पानी वहां से मिलता है, पृथ्वी से सारी चीज जो है, पेट्रोल वगैरह, एनर्जी सोर्सेस, तो ये पृथ्वी हर चीज में दाता है। हम भी दातापन का गुण धारण कर ले, कोई स्थूल चीज देने की बात नहीं है, क्योंकि स्थूल चीज की तो लिमिटेशन होती है, किसी को कपड़ा दो, पैसा दो, अन्न दो, जरूरत का सामान दो, हमारी आर्थिक परिस्थिति पर निर्भर है, लिमिटेशन है। लेकिन हर व्यक्ति जो भी आए हमारे पास से खाली हाथ ना जाए, कुछ ना कुछ ले करके जाए, प्रेम है, सहिष्णुता है, सहयोग है, आदर भाव की बात है, हर चीज हमारी दिव्यता से, दैवी गुणों से वो ले करके जाए। मधुबन में भी आते हैं, देखो उसी का ही यादगार अभी तक ही है कि देवताएं जो है ना, बस देवताएं रत्नों की थाली भर के, हम सभी होवनार देवताएं हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो खाली हाथ जाए, कुछ ना कुछ ले करके जाए। इसीलिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दातापन का गुण जितना हम धारण करते रहेंगे तो पृथ्वी की तरह हम अचल अडोल होते रहेंगे, और समय पर अगर कोई परिस्थिति आई तो ये पृथ्वी ही हमें हमारी रक्षा का कारण बनेगी। कुछ वर्ष पहले कैलिफोर्निया में एक अर्थक्वेक आया था, अमेरिका में बहुत बड़ा अर्थक्वेक था, तो बहुत काफी विनाश हुआ वहां। एक प्रोफेसर साहब का मकान था, रिट्रीट सेंटर जैसा बना हुआ, और उसमें कुछ भी नहीं हुआ, आसपास के सारे मकान गिर गए, दरवाजे टूट गए सब, लेकिन उनके मकान का कांच भी नहीं टूटा। तो सबको आश्चर्य हुआ, मीडिया वाले सब उनके पास गए इंटरव्यू लेने कि आपने किस मटेरियल का मकान बनाया है, क्या बनाया है कि इसको कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि मटेरियल तो मेरा भी वही है जो सभी यूज करते हैं, लेकिन मैं रोज धरती माता के साथ वार्तालाप करता हूं। क्या वार्तालाप, कोई वो बीके नहीं थे, अमेरिकन प्रोफेसर कोई, लेकिन अध्यात्म अपने हिसाब से वो चर्च वगैरह में जाते होंगे, लेकिन मैं रोज वार्तालाप करता हूं, हे माँ, आप मेरी माता हो, मैं आपका बच्चा हूं, बस मेरे से आपको कोई कष्ट न हो ये मुझे देखना है, और इसीलिए आपको परमिशन लेके मैं आप धरती में भी अगर कोई खुदाई करनी होती है तो मैं आपकी परमिशन देता हूँ। भारत में भी एक श्लोक है, मुझे तो आता नहीं वो, कि धरती को जब भी खोदो पृथ्वी को, और जब मकान बनाते हैं उसमें पंच धातु डाले या कुछ भी, तो वो श्लोक पंडित जरूर पढ़ता है कि ये माता बस मैं आपको कष्ट देने जा रहा हूँ, मुझे माफ करना, लेकिन ये मेरी आवश्यकता है, ऐसे ऐसे उसका कुछ मतलब है। तो वार्तालाप मैं करता हूँ और मैं जहां तक संभव हो उसको कष्ट नहीं देता। मैं चलता भी हूँ तो बहुत धीरे धीरे चलता हूँ। आप देखते होंगे हर एक के संस्कार होते हैं, कोई बहुत फटफट फटफट करके चलेंगे कोई फरिश्तों की तरह। बाबा भी बताता है ना कैसे आपकी चाल हो, हमने तो ब्रह्मा बाबा को देखा है, बस बाबा अक्सर ये आंगन होता था टहलते थे हाथ दोनों पीछे किए हुए, बड़ी अपनी मस्ती में बस टहल कदमी चहल कदमी कर रहे हैं। वहां भी पहाड़ी पर भी घुमाने ले जाते थे बाबा, भले तेज तेज होते थे कदम बाबा के, क्योंकि अच्छा कद था, कदम भी बड़े बड़े, तो हम लोग यंग थे लेकिन फिर भी बाबा के पीछे दौड़ना पड़ता था। जैसे वो इतनी आयु के 90 इयर्स के, हम लोगों को दौड़ना पड़ता। तो भाव क्या है कि धरती के साथ, धरती के संस्कारों के साथ हम भी दातापन का गुण धारण करें। और दूसरा क्या, और धरती में क्या क्या गुण है, धरती माता में पृथ्वी में सहनशीलता का, जैसे कि बताया, जब भी कोई ऐसी बात आए बस बाबा ने कहा सहनशीलता के ऊपर तो दिव्य गुण है, इसीलिए सहनशीलता को धारण करते रहे। और धरती के क्या क्या गुण है, अचल अडोल जैसे है ना, अडोलता, ये एक पृथ्वी का बहुत बड़ा गुण है। पृथ्वी में देखो जब भी खोदा भी जाता है बीज, तो बीज नीचे जाता है अंधकार की तरफ, उसकी जड़ें, और वृक्ष प्रकाश की तरफ जाता है। इस तरीके से हमारा भी ऐसा संस्कार हो कि हमारे अंदर भी जो कोई भी हमारी रचना आए, बीज आए, तो हमें धीरे 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 अपने को गुप्त करते जाना है धरती के अंदर अंधकार में, जिससे कि हमारी रचना वो प्रकाश की तरफ पूरी बढ़ सके और अपने जीवन के लक्ष्य को पा सके। और धरती में क्या क्या गुण है पृथ्वी के अंदर, धैर्यता, अचल अडोलता, ये मुख्य, तो जैसे ये ही धरती के गुण हैं। सबसे बड़ी बात यह है धरती हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, गुरुत्वाकर्षण होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। और इसके विपरीत वायु, दूसरा तीसरा अलग तत्व है, वायु हल्की होती है वो हर चीज को ऊपर उठाती है, धरती नीचे खींचेगी वायु हर चीज को ऊपर उठाएगी, लेकिन दोनों की को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व, एक दूसरे को स्वीकार करके साथ, जहां जहां पृथ्वी है वहां वहां वायु है, हर जगह विपरीत गुण हैं लेकिन सह अस्तित्व की बात। ऐसे हमारे भी संस्कार बहुतों से भिन्न होंगे, अलग होंगे, लेकिन हम साथ साथ सह अस्तित्व मिलके चल सके सबके साथ, टकराव ना हो, भिन्नता होगी अनेकता होगी, लेकिन अनेकता में भी एकता का संस्कार हो। तो जितना अगर ये पृथ्वी का ये गुण हमने धारण करते चले अगर हम, तो जितने भी अर्थक्वेक आएगा, जैसे ही अमेरिका की बात सुनी, ऐसे मुझे अभी तक याद है लाटूर में जब आया था तब यीशु दादी के पास एक पत्र आया था, तब मैं भी यहाँ आया हूँ, तब तो कहीं जॉब करते थे आए हुए थे, और तब दादी वो पत्र सुना रहे थे कि लाटूर में अर्थक्वेक आया एक माता का, तो बहुत किसी गांव में से आया था, तो वो माता अपने घर में अकेली ही चलती थी, पति नहीं चलता था, लेकिन ऐसे सहयोगी वगैरह थे बच्चे वगैरह, तो कहती है मैं सुबह उठ के उस दिन भी हमेशा की तरह योग कर रही थी, कमरे में बैठी थी बाबा का, तो एकाएक ही मुझे बस बड़ी तेजी से आने लगा, मैं पति को भी बुलाऊं यहाँ पर, बच्चे को भी कि आप भी आके यहाँ पर योग करो, बाबा को याद करो। तो मैंने सोचा ये तो मेरी शुभ भावना है, हमेशा की तरह रहती है, लेकिन मैं रुक नहीं सकी। मैं बस बुला के लाई पति को भी, चलो 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 योग करो, बच्चों को भी, दो बच्चे बड़े थे, उठा के लाए वहां योग करो। तो कहते अरे भाई हमें सोने दो, लेकिन नहीं 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 अभी चलो फिर बाद में सो जाना। कहते उस दिन मैंने पहली बार ही उन्हें फोर्स किया और बस वहां बैठ के बाबा कमरे में योग किया, तो अर्थक्वेक आया और जो बगल के कमरे में जहां वो लोग सो रहे थे वो पोर्शन उनका गिर गया, उसकी छत गिर गई उन सबके ऊपर। और केवल वो गांव में तो मकान सारे मतलब बहुत क्वालिटेटिव नहीं होते होंगे उतने, तो इसीलिए ये कमरा बच गया। तो इसी तरीके से हमें कच्छभुज का भी हमें याद है, कच्छभुज में हम गुजरात में ही पोस्टेड थे, तो जब कच्छ में अर्थक्वेक आया ना तो थर्ड फ्लोर पर बहनों का किचन वगैरह था, क्लास व्लास करके 8:30 बजे ऊपर थे, तो वो बस दो जीने हुआ करते थे, तो एक जीने से वो हमेशा जाते थे, दूसरे को यूज नहीं करते थे ज्यादातर, लेकिन किचन उसी साइड में था। तो जब तो अर्थक्वेक आया और चारों तरफ हल्ला मचा, रे रे उतरो भागो भागो भागो, तो बहन तो ऊपर थे कैसे, हमेशा वो जिस जीने से जाते थे आना जाना उस जीने से उन्होंने नहीं किया, बस ऑटोमेटिकली वो दूसरे तरफ पास वाला था उधर से उतरे निकले, और जब तक नीचे उतर ही रहे थे तभी एक पोर्शन जो है ना वो जीना वो डैमेज हो गया, ब्लॉक हो गया, और वो तो सेफली नीचे उतर आए। भोपाल गैस ट्रेजेडी के वक्त भी बता रहे थे अवधेश बहन जी कि जब रात को 1:30 बजे गैस लीक करी तो चारों तरफ एकदम सबको सफोकेशन होने लगा, श्वास नहीं आ रही थी, तो हल्ला मच गया भाई गैस लीक करी भागो भागो। तो नीचे मकान मालिक था, ऊपर हमारा सेंटर था, तो नीचे मकान मालिक ने भी कहा भागो निकलो निकलो बहनों भागो, लेकिन बहनों ने कहा नहीं नहीं, बस आए बाबा के कमरे में बैठ गए। और बस बाबा के कमरे में तीन बहनें थी ऐसा कुछ बता रहे थे, बाबा के कमरे में बैठे। कहते हैं कि हमारा कोई ट्रांस का पार्ट नहीं है, ध्यान का पार्ट नहीं, लेकिन बाबा ने टच किया बच्ची, जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भागने की जरूरत नहीं, यहां पर ही जाओ अपने कमरे में और बस गीला तौलिया करके उसको मुंह में ओढ़ लो और रजाई ओढ़ के सो जाओ। दिसंबर का महीना, इतनी ठंडी का मौसम और पानी का गीला करके, तो कहते हैं बड़ा अनिजी तो लगा, लेकिन वो मुंह ढक के उसको सो गए। और बहने कोई इतना कोई केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग तो पढ़े नहीं, लेकिन उससे ये क्या हुआ कि जो गैस मिथाइल साइनाइड लीक कर रही थी उससे ऑक्सीडेशन हुआ और वो उससे मतलब जैसे उड़ गई, और फेफड़ों में ना वो उतनी नहीं आई, और जितने भी लोग भागे थे ऑलमोस्ट 100% की डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि एक तरफ से तो गैस लीक करती थी, वायु तो तेजी से जाती है, आदमी तो लिमिटेड दौड़ेगा, तो जब तक वो दौड़ता पीछे से और गैस आती थी और सब जगह वो फैलती जाती थी। तो सही समय पर बाबा टचिंग करने के लिए बंधा हुआ है, प्रोवाइडेड हमारा एंटेना ठीक हो, हम सही कैच कर सके, और ये कैच तब कर सकेंगे जब उसके साथ उस तत्व के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होगा, मित्रता होगी, वो तत्व भेजेगा सिग्नल तुम इधर भागो ऐसा भागो, लेकिन वो तभी कैच कर सकेंगे जब हमारी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर जो बाबा बताता योग बल से। तो ये है जैसे कि ना ये पृथ्वी की बात और साथ में जब वायु की बात बताई, तो पृथ्वी का जितना भी अर्थक्वेक आए कुछ भी प्रॉब्लम आए, लेकिन ऑटोमेटिकली हमें सोचना नहीं पड़ेगा मैं कहां जाऊं, इधर दौड़ूं या इधर दौड़ूं, नहीं, मार्जिन ही नहीं होगा, ऑटोमेटिकली वही एक रास्ते पर जाएंगे जहां सेफ्टी होगी। इसीलिए उन तत्वों के साथ संस्कारों को मैच करना वो हमारा पहला काम होना चाहिए, वायु का हम बता रहे थे, क्योंकि अंत समय वायु का भी बहुत बड़ा पार्ट है। साइक्लोन 300-400 किलोमीटर की स्पीड से आएंगे, बहुत विनाश का कारण बनेंगे, लेकिन कौन सा हम वायु का संस्कार धारण कर लें, हल्का रहने का, लाइट। कोई भी परिस्थिति आए, पेपर आए, प्रॉब्लम आए, हम भारी ना हो जाए। कई बार कोई लौकिक दुनिया में कोई डेथ समाचार आया, कोई ऐसी परिस्थिति आई, क्या करें, कैसे नहीं निकल सकते, लेकिन उसमें हम तभी रह सकेंगे जब उस तत्व के संस्कार के साथ हमारे संस्कार मैच कर रहे होंगे। एक तो वायु का ये संस्कार है, हल्का रहते हैं सदा, तो कोई भी परिस्थिति आए हम हल्के रहे, एक तो ये है। दूसरा, वायु का क्या संस्कार है, वायु जो है खुद जो है ना, वो गंध रहित है, लेकिन जो भी गंध उसमें मिक्स कर दी जाए उस गंध को लेकर के जाती है। खुद जो है वायु जो है ना, वो उसका मतलब बिल्कुल इम्पार्शल है। ऐसे ही हम भी जीवन में ना बायस्ड ना हो, किसी के प्रति तो बायस्ड है, ये अच्छा नहीं है, इसका ये संस्कार सामने देखते ही हम भी अपना रास्ता बदल लें, निगेटिविटी हो किसी के लिए, क्योंकि स्वाभाविक है किसी ने हमारे साथ जीवन में पहले कुछ बुरा किया है, हमारी प्रगति को बाधा पहुंचाई है, तो उसके साथ हमारा मतलब उतना अच्छा वो नहीं होगा। और दूसरी तरफ किसी के साथ भी ऐसा भी ना हो कि उसके बिना हम रह ना सके, जैसा आज भी बाबा मुरली में बता रहे थे। तो इस कारण से ऐसा ना हो, गंध रहित इम्पार्शल हो, नाइदर अटैचमेंट नॉर रिपल्शन, तो उससे क्या होगा, अंत समय हमें ना याद ही वो व्यक्ति आते हैं, या तो किसी से बहुत अटैचमेंट हो या किसी से रिपल्शन बहुत ज्यादा हो, तो बिल्कुल मक्खन से बाल की तरह आत्मा निकल जाएगी। और यही है भीष्म पितामह की तरह इच्छा मृत्यु, जो हमने बाबा में भी देखा, वो हम बताएंगे कैसे बाबा ने शरीर छोड़ा। तो इस रीति से वायु का ये संस्कार हल्केपन का और अनबायस्ड। और क्या वायु का संस्कार, ये तो पहले बता दिया ना, पृथ्वी से मैच भी नहीं करता, वो नीचे खींचती है, वायु ऊपर ले जाती है, लेकिन सहज अस्तित्व में रहना। एक ही परिवार के चार लोग हैं, चारों के संस्कार अलग अलग होंगे, लेकिन उसमें रहते हुए भी ना किसी के प्रति न तो घृणा भाव, न अति प्रेम का भाव, जिससे कि और साथ में कौन सा तत्व है, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का क्या संस्कार है, उसमें अग्नि में जो भी चीज डाली जाती है उसका रूप बदल जाता है, जो भी चीज डालो। तो हाँ, तो यही संस्कार सूर्य, प्रकृति में सूर्य जो है वो अग्नि का प्रतीक है, इसीलिए सूर्य के उगते ही ना, जैसे ही सूर्य उगता है अंधकार को बदल के रोशनी में ला देता है। जीवन जो प्राय मृत प्राय जैसा होता है, स्टैग्नेट स्टैटिक जीवन होता है रात को, वो तुरंत रोशनी होते ही चारों तरफ हलचल पैदा हो जाती है, जीवन अस्तित्व में आ जाता है। ऐसे ही हमने अगर वॉल्केनिक योग, ज्वालामुखी योग अगर धारण किया हुआ होगा तो क्या होगा, अंत समय में बाबा ने बताया ऐसी आत्माएं आएंगी, जो मैंने पहले बताया, जो बहुत कमजोर आत्माएं होंगी, रोती हुई आत्मा, अशांत आत्मा, दुखी आत्माएं आपके सम्मुख आएंगी, लेकिन उस वक्त ये मार्जिन नहीं होगा दो शब्द भी बोलने का, बस आपके सम्मुख आए, दुख से उनका रूप बदल जाए आपका वॉल्केनिक योग देख करके, और दुख सुख में परिवर्तन हो जाए, रोती हुई आत्मा आए हंसती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए। तो वो ये कब होगा, जब हमने खुद ज्वालामुखी योग, ज्वालामुखी माने ज्वालामुखी की कई एक हिस्ट्री है, ज्वालामुखी का कहां से निकला है मालूम है नाम, हिमाचल प्रदेश में एक शहर है उसका नाम ज्वाला देवी है, तो वहां पर उसका नाम ऐसे ही पड़ा है कि वहां एक मंदिर है ज्वाला देवी का मंदिर, और उसके मुख से ज्वाला हमेशा निकलती रहती है, तो ज्वालामुखी, मुख से हमेशा जिसके ज्वाला निकलती है तो ज्वालामुखी देवी वो पड़ गया राम। और बूढ़े बूढ़े लोग भी बताते हैं तो मेरे दादा के वक्त से ऐसे ही अग्नि जल रही है, कभी भी एक सेकंड के लिए भी बुझी नहीं। तो बहुत लोगों की भावना है उस मंदिर के लिए, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो मैं तो अपना वो उसकी हिस्ट्री बताता हूँ थोड़ी सी, कि मैं ONGC में लौकिक जॉब इंजीनियरिंग करने के बाद पेट्रोलियम इंजीनियरिंग किया था और उसके बाद ONGC में जॉब किया। तो हम लोगों को भी ट्रेनिंग में ये बताया गया था ज्वालामुखी का इतिहास, हिस्ट्री। तो क्या है कि सर्वे करते हैं इंजीनियर्स, तो वो सर्वे कर रहे थे भारत में, तो जब जो वहां पर सर्वे कर रहे थे उधर हिमाचल प्रदेश में, तो उन्होंने देखा कि यहाँ इस धरती के नीचे तो बहुत गैस के भंडार है। ज्वालामुखी ज्वाला देवी की तरफ जब उधर गए तो ये सब देख के, फिर ज्वाला देवी का देखा तो उसके मुख से ज्वाला निकल रही है, तो ये लोग तो समझ गए, साइंटिफिक माइंड है। तो उन्होंने वहां लोगों को कहा कि भाई ये कोई देवी की महानता की बात नहीं है इसमें, ये तो भाई नीचे गैस के भंडार हैं और कहीं से गैस लीक कर रही है और वहां किसी ने मूर्ति बना दी है, तो ऐसा है। तो लोगों की आस्था को ठेस पहुंची, तो उन्होंने थोड़ी लड़ाई झगड़ा किया, बात हेडक्वार्टर तक पहुंची, वहां से फिर सीनियर ऑफिसर्स वगैरह आए। तो उन्होंने इस बात को, बाबा कहते हैं सत्य रखो, सत्यता हो लेकिन सभ्यता भी हो। तो सत्य बात अगर हम ज्ञान भी सुनाना चाहते हैं लेकिन अगर आदर सत्कार सभ्यता के साथ नहीं है तो उस ज्ञान का असर भी नहीं होगा। तो पहले जो लोअर स्टाफ था उन्होंने ये बात कही, उसका असर नहीं हुआ। फिर सीनियर ऑफिसर आए, बताया देखो हम भी हिंदू हैं और हम भी देवी को मानते हैं लेकिन ये विज्ञान की बात आपको बताते हैं। तो उन्होंने क्या करा, नीचे गैस के भंडार थे वो चैनल जा देखा, उन्होंने सर्वे में उसको आइडेंटिफाई किया और वहां पर वाल्व लगा दिया, बता के कि देखो ये हम वाल्व लगा रहे हैं। फिर वहीं के इस जो सरपंच वगैरह था उसको बुलाया कि अच्छा आप अपने हाथ से इस वाल्व को घुमाओ, तो उसने घुमाया, वाल्व बंद हुआ जैसे गैस होती है कुकिंग गैस, और फिर ज्वालामुखी देवी के मुंह से निकलना बंद हो गया ज्वाला, आग बुझ गई। फिर उसे बोला अच्छा उल्टी तरफ घुमाओ, उसने खोला और फिर गैस को जलाया, फिर जलने लगा। अपनी आंखों से देख लिया, अपने हाथों से उन्होंने करके देख लिया, तो ये एक विज्ञान का जैसे उनकी बुद्धि में धीरे धीरे बैठा। ये तो ये ज्वालामुखी माने इसके लिए कंटिन्यू एक प्री रिक्वायरमेंट है ज्वालामुखी योग, उसका ही होगा जिसमें कंटिन्यूटी होगी। एक सेकंड का भी अगर ब्रेक हो गया ना, कुकिंग गैस में भी घर में माताएं जब जानते हैं थोड़ा एक जरा सा भी कम करेंगे, बंद हुआ उसके बाद फिर से उसे जैसे जलाना पड़े। तो ये ज्वालामुखी योग के लिए जो बाबा कई बार बोलता है, योग भट्टी करो, ज्वालामुखी योग हो, ऐसा योग हो जो परिवर्तन कर सको किसी को भी। आज भी बाबा ने कहा ना, अनुभवी मूरत बन करके वो अनुभवी मूरत दूसरों को भी बनाते चलो। लोगों ने सुना बहुत है, अब अनुभव करना चाहते हैं। तो इस रीति से ये ज्वालामुखी योग बाबा जो चाहता है उसके लिए कंटिन्यूस करें। ठीक है सुबह शाम तो हम लोग करते हैं लेकिन सारे दिन कैसे रहेगा योग, बहुत डिफिकल्ट है। तो उसका योग का मतलब है, एक बार रमेश भाई ने बाबा से यही पूछा कि बाबा आप ये कहते हैं हमेशा जो साकार ब्रह्मा बाबा थे उनसे, साकार ब्रह्मा बाबा से उसको उनको मैं कोट कर रहा हूँ कि बाबा ये कैसे 8 घंटा योग कैसे रहेगा और जो श्वासोश्वास आप बोलते हो तो योग कैसे, फिर काम कैसे होगा। कि अगर बाबा को याद करेंगे, माइंड तो एक ही है, तो उधर बाबा को याद करेंगे तो मानो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मैं काम कैसे, बुद्धि जब तक इधर नहीं लगेगी कैसे काम करूंगा, कैसे होगा। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, भाव समझना चाहिए हर चीज का, कि जब बाबा याद करो उस समय तो ठीक है, जब कार्य व्यवहार में याद करो उसका भाव क्या है, हर चीज में तुम्हारी सकारात्मकता हो, पॉजिटिविटी हो, मन वचन कर्म में कार्य करते भी जो संपर्क में आ रहा है उसके प्रति मन के अंदर भी पॉजिटिवनेस हो, किसी के प्रति निगेटिविटी न हो, तो आपका ये जो खजाना ये लीक नहीं हो रहा है, ये भी जमा हो रहा है। और याद जब करोगे वो जैसे कि हाई डिग्री की याद है, टेम्परेचर जैसे होता है ना, अब टेम्परेचर 5-10 डिग्री भी होगा, 15 डिग्री भी, उसमें हाथ डाल सकते हैं, लेकिन 100 डिग्री पानी उबलने का होगा, उसमें डालेंगे तो हाथ जल जाएगा। तो डिग्री कंसंट्रेशन ऑफ ये याद कैसी है, तो इस रीति से इस बात को समझना चाहिए कि हर चीज में हमारी सकारात्मकता जितनी होगी, कल्याण की भावना हो, किसी के प्रति द्वेष न हो, तो वो सब भी जैसे योग में आता है, याद में, क्योंकि उस समय आपका खजाना कोई लीक नहीं हो रहा है। और जब इंटेंस योग कर रहे हैं, स्पेशल बैठ के योग कर रहे हैं, बाबा से याद, बिंदु रूप की स्थिति, अव्यक्त स्थिति, आप जो वो बनाना चाह रहे हैं वो बन, उधर उस स्थिति में योग है, उसमें भस्म होंगे जितने विकर्म है, लेकिन नए विकर्म तो नहीं बनने चाहिए ना। तो इस कारण से नए विकर्म ना बने, और अभी तो अगर ज्ञान के बाद अगर कोई भी विकर्म जैसा कोई भी कर्म ऐसा हुआ, उसका तो बाबा ने क्या बताया, कितना 100 गुना दंड बच जाएगा। अज्ञान काल में 100 ऐसे काम करते तो जितना खाता बनता, अभी एक भी अगर विकर्म हो गया तो 100 गुना खाता, तो समझो कितना लीक कर गया। इस कारण से अभी आवश्यकता जो है इस बात की है, जो ये योग की बात चल रही थी ना, सूर्य की बात, तो सूर्य की तरह हम कंटिन्यूअस, जैसे सूर्य प्रकाश दे रहा है, सूर्य में कोई भेदभाव नहीं है, अमेरिका को दू ना दू, इंडिया को दू प्रकाश, ये वो, जैसे पृथ्वी का कोई भी भाग घूम करके उसके सम्मुख आता है वो प्रकाश हो जाता है। ये दूसरी बात है कि सूर्य के सम्मुख बादल आ जाए, पॉल्यूशन आ जाए वो, लेकिन सूर्य अपना तेज वो तो दिखाता ही रहता है। एक सूर्य का ये गुण है। और सूर्य की क्या विशेषता है, हाँ ये तो कचरे को कराई, एक सूर्य की तरफ अगर मुख होता है ना, तो हमारी छाया पीछे पड़ती है। अक्सर बहने अपने कोर्सेज में भी बताते हैं, बस सूर्य की तरफ मुख है, लाइट की तरफ मुख है, जो छाया है परछाई पीछे है, लेकिन सूर्य की तरफ पीठ हो जाएगी तो परछाई आगे आगे जाएगी। तो छाया यानी कि माया यानी कमजोरी, अगर ज्ञान सागर की तरफ मुख रहा तो वो सब पीछे रहेंगी, वो हमें गाइड नहीं करेंगी, उनके वशीभूत होके हम कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे। तो इसीलिए उनकी तरफ सदा हमारा मुख हो, आगे बढ़ते रहे हम और पीछे वो, लेकिन कभी अगर किसी परिस्थितियों वश उनकी तरफ पीठ हो जाती है तो हमारे अंदर की कमी कमजोरियां वो सब सामने आने लगती हैं। कई बार हम माया को बस विघ्नों से भी कंफ्यूज कर लेते हैं। क्या फर्क है विघ्न और माया में, विघ्न आते हैं माया, विघ्न जो है वो बाहर से आता है, माया अंदर से आती है, ये बेसिकली डिफरेंस है। मान लीजिए मैं सुबह उठा, तैयार हुआ क्लास जाने के लिए, लेकिन देखा बाहर गया तो मेरा कार में पंचर है, स्कूटर में, ये विघ्न हुआ, ये माया नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद संकल्पों में हमारे ये आया चलो आज नहीं जाते, नहीं तो फटाफट उसे चेंज करके जाए, या जैसे भी परिस्थितियों को अनुकूल बनाते हुए वो जो रिएक्शन है वो फिर माया को जनरेट करता है। तो विघ्न जो आते हैं वो तो बाहर से प्रॉब्लम्स समस्याएं, लेकिन उसके फलस्वरूप जो अंदर की कमजोरी है, जो बहाना बन जाता है, वो माया है। तो एक ये पहचानने का दृष्टिकोण हमारा बहुत स्पष्ट हो, तो ये सूर्य का है। और सूर्य का क्या, क्योंकि अंत समय ये पाठ हमारा सबका चलना है, ब्रह्मा बाबा का है, मैं साथ साथ मिक्स करता हूँ। ब्रह्मा बाबा को 1962 में हम ज्ञान में आए, बहुत बार बाबा से मिले, ऑलमोस्ट पिछली, पहले तो साल में 3-4 बार, कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, जब भी करे इच्छा हो, बाबा कहता था आओ बच्चे और अपनी बैटरी चार्ज करके आओ, बादल आते हैं भर करके जाओ। तो कभी भी, तब तो हम इंजीनियरिंग पढ़ाई करते थे, जब भी कहीं कॉलेज में छुट्टी हुई, कभी स्ट्राइक हो गई, कभी एग्जामिनेशन के बाद की छुट्टी हुई आदि आदि आ जाते थे, तो बाबा से बहुत बार मिले। लेकिन अंतिम दो दिनों में जो मिलना हुआ वो मैं कुछ कोट करना चाहता हूँ कि मैं आसाम में पोस्टेड था इंजीनियरिंग पढ़ाई के बाद, और बाबा ने, हाँ, जब मैं जा रहा था, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी आसाम में, तो मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि पूरे आसाम में एक भी सेंटर नहीं था, गीता पाठशाला भी नहीं, कुछ भी नहीं, और मेरा आसाम में लास्ट में शिव सागर में पोस्टिंग हुआ। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा वहां पर जाएंगे, वहां तो क्लास भी नहीं है, सेंटर भी नहीं है, कैसे पालना होगी। बाबा देखो कैसे सब बच्चे, इसीलिए ही तो बाबा तुम्हें वहां भेज रहा है, तुम्हें वहां जा करके खोलना है, बाबा का संदेश देना है। अब बहुत बच्चे बाबा के भोले भाले हैं वहां पर, वो इंतजार कर रहे हैं, बस तुम्हें तो बस बाबा का संदेश दोगे और वो अपने आप आएंगे, तुम्हें कोई मेहनत नहीं करना। और वही देखा, बस बाबा बताता था, बच्चे मंदिर में जाओ, तब तो चार चित्र मुख्य होते थे, चित्र लेकर जाते थे मंदिर में, वहां पर जब भक्त लोग बाहर निकलते थे चित्रों को समझाते थे। वहां लेक थी, शिव सागर नाम ऐसे ही पड़ा है, लेक के किनारे शाम को बैठ गए, वहां पर समझाने लगाए उस तरह। तो बिना कुछ उसके बहुत जल्दी ही वहां पर बहुत बड़ी क्लास हो गई। तो भाव क्या है बताने का, कि बाबा ने जब भेजा, फिर भी हम अनमने मन से जा रहे थे, बाबा ने कहा, अरे बच्चे टाइम होगा, जब समय होगा बाबा तुम्हें बुला लेगा। और वही देखो, हाँ, उस समय कहीं भी विदेशों में कोई सेंटर नहीं था, लेकिन जनवरी 1969 में करीब फर्स्ट सेकंड वीक था, तो बाबा का पहले देहरादून से पत्र आया, हम देहरादून से गए थे वहां, बहन जी का भी यहाँ म्यूजियम बन रहा है, आप कुछ दिन की छुट्टी लेके आ जाओ, ऐसा प्लान है म्यूजियम बनाने का। तब तो म्यूजियम जनरल होते ही नहीं थे, बहुत ही कम, कहीं तो दो चार, मतलब पूरे भारत भर में एक दो म्यूजियम होंगे। तो हमने बाबा को लिखा कि बाबा वहां पत्र आया है और वहां हम जाएं उधर। तो बाबा ने कहा कि बच्चे हाँ हाँ जरूर जाओ, सेवा का है, लेकिन पहले मधुबन आओ और प्लेन से आओ। तो देखो, बाबा ने कहा था कि बाबा तुम्हें बुला लेगा समय पर, इतनी दूर भेज रहा है, नहीं तो हमारे मन में यही होता, देखो इतनी दूर यहाँ आए तो 18 जनवरी को तो जो ड्रामा में फिक्स था वो हुआ ही, नहीं पहुंच पाते। लेकिन बाबा ने बुला लिया और फर्स्ट टाइम ही लाइफ में तब प्लेन से चढ़े और वहां पर आए और 17 जनवरी की सुबह यहां पर पहुंच गए, अपने लौकिक पिताजी को भी लिख दिया। तो 17 और 18 जनवरी को दो दिन में यहां पर बाबा से पूरी, भले उससे पहले भी 15-20 बार मिल चुके होंगे, लेकिन तब तो बाबा कर्मातीत बन चुका था। उस समय हमने क्या देखा, पहली बात, जब भी बाबा के सम्मुख जाते थे सोचते थे आज बाबा से ये बात करेंगे, बाबा को यहाँ का सेवा समाचार सुनाएंगे, बाबा को ये पुरुषार्थ की बात बताएंगे, आगे की गाइडलाइन लेंगे। लेकिन जैसे ही बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा दृष्टि देते थे और दृष्टि देके बाबा कहते, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। यानी हमें एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बाबा प्रश्न भी बता देते थे, हम क्यों आए हैं, क्या पूछने आए हैं, और उसका समाधान भी दे देते। ये है कर्मातीत अवस्था का पहला लक्ष्य, जो अंत में हम सबको भी हासिल करना है। और ये कैसे होगा, जो है, जो कहा जाता है, मन जीते जगत जीते। जिसने मन को, यानी अपने संकल्पों को अगर कंट्रोल कर लिया, तो जगत को भी जैसे कंट्रोल कर लिया। भारतीय संस्कृति भी यही कहती है। एक बार, दो बार, लगभग 7-8 बार दो दिन में बाबा से मिले, हर बार ही ये होता था, बस बाबा एक तो ये देखा आपने। दूसरा लक्षण, उस दिन बाबा जो है ना, मतलब सुबह बाबा ने योगी कराया, क्लास नहीं कराई, और ईशु दादी को बोला आज जितने भी पत्र लिखाने हो लिखा दो और सब कोई भी रह न जाए पत्र जो जिसका जवाब न गया हो। पहले तो इंटरनेट ईमेल नहीं होता था, बाबा के पत्र आते थे और बहुत बहुत बढ़िया पत्र हाँ इतना होता था, और नूरे रतन, सुदर्शन चक्रधारी, ब्राह्मण कुलभूषण, ऐसे मतलब एडजेक्टिव लिख करके बाबा बच्चों को और फिर पत्र की शुरुआत करा करते थे ऐसे बच्चे, और ये करके तो वो बाबा उस दिन दादी को बोला सब पत्र लिखा। क्यों? क्योंकि अगर अंत समय में किसी का पत्र बाबा को मालूम था आज मेरा ये अंतिम दिन है इस साकार तन के अंदर, तो लेकिन बाबा ने कोई रिवील नहीं किया, इसे बताया नहीं, लेकिन बाबा को पक्का पता चल गया था, ऐसा हम बात लोगों को अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी उस दिन की एक्टिविटी बाबा ने की वो सारी की सारी एक्टिविटी यही थी कि जो कर्मातीत अवस्था के अनुकूल होती है। दूसरी बात यही कि सारे पत्र लिखा लो, यीशु दादी के साथ बैठ के बाबा बहुत देर तक पत्र अपना लिखते रहे। जो इस पुरानी बिल्डिंग में जाते हैं तो राइट साइड में बाबा का ऑफिस था, जो जहां पर ये पोर्च के अंदर बैठे रहते हैं ना, तो शुरू में पहला और राइट साइड में दूसरा जो डिस्पेंसरी उधर से है इधर से ही, वो बाबा का ऑफिस था, बाबा वहां बैठा करते थे। उस दिन वहां पर काफी बाबा ने सारे के सारे पत्र लिखवाए। तीसरी बात, बाबा ने कहा कि बच्ची वो जो नक्की लेक का म्यूजियम है ना, वो बिल्डिंग बहुत दिन से पड़ी हुई थी पेंडिंग, और सब बोलते थे कि भाई कुछ मतलब वहां बाबा कहाँ जाएंगे, सब सोचते थे, तब तो इतना थिंकिंग वाइड नहीं थी, लेकिन बाबा ने उस दिन वो क्लियर किया कि उस बिल्डिंग को ले लिया जाए, सिग्नेचर किया उस फाइल में और वहां सेवा का स्थान बनाया जाए, वो बाबा ने करा देखो। चौथी बात, बाबा ने मतलब जो जो पेंडिंग काम थे, क्योंकि अंत समय हमारी बुद्धि वहीं जाएगी जो पेंडिंग बचे हुए काम होंगे। अक्सर करके यहाँ कई बार जब भोग लगता है, पूरे भारत भर से परिवार आते हैं, अपने परिवार के कोई सदस्य छोड़ के गया तो यहाँ भोग लगाते हैं, हमारी परंपरा है। तो कई बार ये देखा गया है जो भी जिसका भोग लगाते हैं तो वो संदेशी में आत्मा आती है, जब भोग स्वीकार करती है और बताती है कि अरे मैं ये करना चाह रही थी लेकिन मुझे ये करना था, मैं टालता रहा, कल कर लूंगा, लेकिन फिर मेरा शरीर छूट गया, अब क्या करूं, मेरा तो भाग्य बनने से रह गया। तो अंत समय में वो बात याद आने की ज्यादा संभावना है जो पेंडिंग काम, बचा हुआ काम, विल नहीं करी मानो वो विल का रहेगा बाद में, कहां जाए, किसके पास जाए, कोई अगर ऐसा काम है, घर का काम है सास बहू का या कोई भी, तो वो ही उन्हें याद रहेगा, देखो ये चाबी ये बता के नहीं आए, ये काम बाकी था, ऐसा था। तो उस रीति से जितने भी काम बचे हुए हों उस कामों को धीरे धीरे हम निपटाते चले, फाइनेंशियल वर्क हो चाहे ऑर्गेनाइजेशनल हो, कोई भी हो, वो जो अंत समय में हमारी बुद्धि को अपनी तरफ न खींचे, नहीं तो अगर अंत समय में खींचा बुद्धि वहीं चली गई तो अंत मते सौगति तो होगी नहीं। इस कारण से बचा हुआ कोई काम ऐसा न हो जो कि मतलब हमें अपनी तरफ आकर्षित कर ले। और हमेशा मधुबन में क्लास होती है रात को 9:45 होती है, सब भोजन वोजन करके उसके बाद, लेकिन उस दिन बाबा ने लगभग 6:30 के करीब ही जमुना प्रसाद भाई यहाँ है, उन्हें बुला के कहा कि बाबा आज क्लास अभी जल्दी कराएगा, सबको बता दो। तो बाहर यही हिस्ट्री हॉल के बाहर एक घंटा रखा रहता था जैसा स्कूल में होता था, उन्होंने बजाया, तब थोड़े ही लोग थे, सब इकट्ठे हो गए तो बताया कि आज बाबा क्लास जल्दी लेंगे, सब भोजन करके वहां आ जाओ। बाबा ने खास इंस्ट्रक्शन दी थी, सब सोचे कि चलो क्लास तो आज 1:45 की होती है, लौट के भोजन कर लेंगे, लेकिन बाबा ने इंस्ट्रक्शन नहीं, सब भोजन करके आ जाओ। क्यों? क्योंकि जब बाद में तो बाबा का शरीर तुरंत ही छूट गया और उसके बाद तो फिर भोजन वोजन कोई करता नहीं, तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन जितने पेंडिंग काम थे बचे हुए वो बाबा ने सारे निपटा दिए। ये टचिंग भी राइट टचिंग राइट टाइम पर हम सबको होगी, प्रोवाइडेड हम भी भीष्म पितामह की तरह ना वो हमारा वैसी एक्टिविटी रही हो, हमने सब जगह से समेटा हुआ हो, तो धीरे धीरे करके पेंडिंग कामों को हम समेटते जाए। फिर बाबा उस दिन अनाउंस करके बाबा क्लास में आए और अक्सर करके बाबा को खांसी वगैरह आती थी क्योंकि बाबा की एज थी इतना, सर्दी का मौसम जनवरी का महीना और पहले तो आज से इतने साल पहले तो मतलब बहुत ही ज्यादा सर्दी होती थी, अभी तो ये ग्लोबल वार्मिंग और इन सब की वजह से बहुत मौसम गर्म होने लगा। तो उसमें बाबा जब क्लास में आए बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई, तो बाबा को लास्ट एक दो दिन में अब बिल्कुल बाबा फ्रेश। कई बार बाबा ने ये कहा है बच्चे कर्मातीत अवस्था हुई और तुरंत शरीर छोड़ के चले गए तो फायदा क्या हुआ, कर्मातीत अवस्था का अनुभव तो करो ना। तो कुछ घंटों की बात में बाबा ने कहा है, पूरा 7-8 घंटे या जितना भी हो, इसको स्पेसिफिक तो नहीं कर सकते, लेकिन जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव हो, बीमारी मुक्त, कोई भी टेंशन मुक्त, व्यर्थ संकल्प मुक्त, बिल्कुल वो ही तो कर्मातीत अवस्था है। तो उस दिन बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई और पूरा जैसे योग बल ने भोग बल के ऊपर, भोगनाएं जितनी थी उनके ऊपर संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली थी। उस दिन का ये एक तो विशेष अनुभव रहा। तो बाबा ने पूरा मुरली सुनाया और मुरली सुना के, और जब ऐसे वक्त होता है ना तो क्या होता है, कर्मातीत अवस्था होती है जब, तो गायन है ना भाई, भगवान भक्त के मन में कोई इच्छा होती थी, बहुत तीव्र इच्छा, भगवान को कहता था, भगवान दर्शन देते थे और क्या उनके मुंह से निकलता था, तथास्तु, और फिर अंतर्ध्यान होके भक्त की मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। मैं भी सामने बैठा हुआ था, मुरली सुन रहा था, 18 जनवरी की रात्रि क्लास की बात है, तो बैठे बैठे मेरे मन में संकल्प आया कि बाबा कुछ मेरे लिए बोले, कुछ बात बताए। हरेक की इच्छा होती है, तब तो हम भी बहुत यंग थे और क्योंकि अभी भी होती है भाई, बाबा व्यक्त बाप दादा आते हैं तो असेंबली जब ऊपर इतने लोग मिल रहे हैं तो मुझे भी जाने को मिल जाए, मुझे भी बाबा की दृष्टि मिल जाए, बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, इसमें खराब बात नहीं है, लेकिन अपने प्रति ये शुभ भावना, तो मुझे ये हुआ कि बाबा साकार बाबा कुछ बोले। और बस मन में जैसे ही संकल्प आया और कुछ मिनट भी नहीं गुजरे, बाबा तो कर्मातीत बन चुका था, इतने माइंड की क्लैरिटी थी, इच्छा मात्रम अविद्या, कोई भी अपनी इच्छा जब नहीं होगी व्यक्ति के मन में तो दूसरे की इच्छा को वो तुरंत पढ़ लेगा, ये कर्मातीत अवस्था की ब्यूटी है। क्योंकि अपनी इच्छा, अगर अपनी इच्छा हुई कोई तो दूसरे की इच्छाओं से मिक्स हो जाएंगे, पढ़ नहीं सकते, तो पहले कर्मातीत वाले को इच्छा मात्रम अविद्या, और बाबा तो बन चुका था, तो जैसे ही ये संकल्प आया तुरंत बाबा तक पहुंचा होगा और बाबा ने नाम लेकर के कई महावाक्य उच्चार दिए, देखो ये बच्चा मोहन है, बहुत मीठा बच्चा है, कभी किसी की निंदा नहीं करेगा, आदि आदि अंत तक संपूर्ण बन जाएंगे। तो बाबा क्या ये जो है बात, हमारे द्वारा भी हमारे भक्त लोग इस बात को अनुभव करेंगे, जब हम भी इच्छा मात्र अविद्या के बहुत निकट होंगे तो हमारे सामने भक्त लोग आएंगे, उनकी जो भी इच्छा होगी वो बोल देंगे नहीं, समय नहीं होगा, लेकिन हम उनकी इच्छाओं को पकड़ करके और तुरंत ही बस तथास्तु, और उनकी इच्छा, तभी तो भक्ति मार्ग में वो हमारे मंदिर बनाएंगे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मंदिर, इतना क्योंकि ये हम उनके इष्ट देव हैं। तो हमारे मंदिर तभी तो बनेंगे जब पहले यहां हम चैतन्य में हैं, यहां हम उनके मन की इच्छा को पूर्ण करें। अभी क्या इच्छा होंगी, दुख शांति से मुक्ति और जो भी उनके अंदर कोई है उनको हम अपनी शुभ भावना से बस संपूर्णता का अनुभव कर। एक ही है तो ये बाबा के कुछ लक्षण देखे और बस बाबा फिर क्लास में मुरली सुना के अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड नाइट कह के बाहर आए और दरवाजे के पास आके बस बाबा ने फिर आते आते भी बाबा ने कई बार दृष्टि दी। सामने दादी जी बैठे हुए थे, दादी प्रकाशमणि जी, तो सबको थोड़ी थोड़ी दृष्टि देते देते बार बार दादी की तरफ दृष्टि आ जाती थी। दादी को बहुत दृष्टि, गहन दृष्टि देते। फिर बाबा सबको दृष्टि देके अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। ये शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं बोले, विदाई लेता है, छुट्टी लेता है। ये कह के बाबा गए कमरे में और हम सब जानते हैं कि बाबा के हाथ में हाथ दादी जी का, दादी जी भी उनके पीछे पीछे गए। और बाबा ने मुरली में बोला था 17 तारीख को शाम को, बच्चे जब यहाँ आते हैं ना तो बस यहाँ तो बहुत खुला है, छत पर चले जाएं, मंथन करें और बाबा को याद करें तो बाबा बड़े अच्छे अच्छे अनुभव कराएगा। 17 जनवरी की रात्रि क्लास में तो बस बाबा की मुरली सुन के भोजन वोजन तो कर ही चुके थे, हम ऊपर टहल रहे थे तभी हमने देखा जमुना प्रसाद भाई बड़ी तेजी से साइकिल लेकर के निकल रहे हैं। तो हमने ऊपर से पूछा भाई अरे आप रात को कहाँ जा रहे हो इतना लेट, 9:30 होंगे कुछ। तो कहा कि नहीं मैं जरा डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ, दादी ने मुझे कहा है और बाबा को आके देखे जरा। तो हम भी फिर उतर करके छत से और पीछे की तरफ गए। जो बाबा का अभी कमरा है ना तो पहले एंट्री बाहर से नहीं होती थी, बैक साइड से होती थी उधर से, तो अंदर ही पीछे एक कमरा है वाया दैट वन। और हम भी जाकर खड़े हो गए लेकिन हमने देखा, हमें तो दादी की पीठ दिखाई दी, बाबा भी पूरा नहीं दिखाई दिया लेकिन दादी का पीठ था, दादी का हाथ बाबा के हाथ में और बाबा ने फिर विदाई दी। तो उसके बाद की बात बस संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि वो बाबा का शरीर 18 जनवरी की रात को छूटा, अर्ली नाइट, 18 की रात रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को भी दोपहर के बाद उसका संस्कार किया गया। कोई लोशन नहीं लगाया गया था, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया था, उस समय तो कुछ यहां पर था ही नहीं ऐसा, लेकिन बाबा का शरीर वैसे ही चमकता रहा, बिल्कुल उसके ये 5 तत्वों का बना शरीर, कोई काला नहीं पड़ा, कोई दुर्गंध नहीं आई, कोई डिसइंटीग्रेशन बॉडी का नहीं हुआ, कोई भी, ये है प्रकृति पर विजय का प्रतीक। 5 तत्वों के इस शरीर, हमने कई बार डॉक्टरों से पूछा कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि भाई, लेकिन सबसे बड़ी ब्यूटी कि बाबा के शरीर में अकड़न भी बहुत कम थी, क्योंकि जब हम लोगों ने 21 तारीख को स्नान कराया, वैसे सारे ही बड़े भाई थे, हम लोग तो बहुत छोटे थे उस समय, लेकिन मदद कर रहे थे, देखा तो एकदम स्टिफ हो जाता है 2-4 घंटे के बाद ही, लेकिन बाबा के शरीर में स्टिफनेस तो जरूर थी लेकिन काफी हद तक ना, जो नया कपड़ा वगैरह पहनाया गया सब कुछ बिल्कुल बहुत ही कम, चमकता शरीर, कोई दुर्गंध नहीं, ये है प्रकृति पर विजय का प्रतीक। और अगर यहां पर भी हम 5 तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे तो प्रकृति भी बंधी हुई है, और इसका लिविंग एग्जाम्पल हमारी दादी जानकी जी है। मुझे याद है 2000 में 31 दिसंबर 1999 अगले दिन न्यू मिलेनियम शुरू हो रहा था, 2000वां वर्ष, अहमदाबाद में लोटस में दादी की तबीयत बहुत खराब थी, वहां से फोन आ रहे थे कि भाई दादी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, उधर भी लंदन भी फोन कर दिया गया, जयंती बहन वगैरह भी निकल गए और बहुत दादी, डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया। यहाँ बाबा को बताया गया कि दादी, बाबा दादी की तबीयत तो ऐसी है लोटस में। बाबा ने सबके कोई नहीं, बच्ची वो बच्ची, अंत तक प्रकृति उस बच्ची का साथ देगी, एक ही लाइन बोली, अंत तक प्रकृति साथ देने के लिए बंधी हुई है। बस फिर कैसे एकदम सारा रिवर्सल होने लगा, दादी बिल्कुल ठीक हो गई और आज उस बात को 17 साल बीत गए। तो प्रकृति पर कैसे विजय, हम रोज, मैंने दादी से एक बार पूछा था, दादी आपको ये प्रकृति जीत का वरदान दिया हुआ है, आप क्या करते हो? दादी ने कहा कि हम ये प्रकृति के तत्वों को, मैं रोज जब बाबा को याद करती हूं तो मैं तत्वों को भी रोज योगदान देती हूं। और योगदान, हम भी एक नियम बना लें कि कम से कम 5-7 मिनट प्रकृति के तत्वों को रोज योगदान देंगे, क्योंकि अंत समय हमारी सफलता या असफलता इस पर ही निर्भर करती है कि आत्मा कैसे निकल के जाएगी। अगर आत्मा अटकी रही तो लौकिक बातें, ये बातें याद आती रही तो ये तो असफलता है, और प्रकृति जीत नहीं बने, लेकिन अंत में बस सब रहेगा, सब कुछ, सब संबंध, परिवार, सब कुछ होगा, पदार्थ होंगे, अंत समय तक तो प्रकृति भी और दासी होती जाएगी, लेकिन सब पदार्थ होते हुए भी कहीं पर भी हमारी बुद्धि न अटके, यह प्रकृति जीत का लक्षण। और जितना जितना हम पर, तो रोज हम क्या करें, ऐसी जगह कहीं पर भी कि जहां पांचों तत्व तो दृष्टिगोचर हो, बस। यहां तो ऊपर तो बड़ा सहज था, नीचे थोड़ा डिफिकल्ट है। आबू रोड में नक्की लेक के पास जाते हैं तो वहां पर तो पानी भी है और पर्वत पृथ्वी का भी है, सूर्य भी, थोड़ा क्लास के बाद टहलने जाओ तो ऐसा होता है, पांचों तत्व तो दृष्टिगोचर होते हैं। तो बस एक एक तत्व के प्रति हम थोड़ा वार्तालाप करें, उनको दृष्टि देके, जल को, सूर्य को, आकाश को, तत्व को, और जो बात बताए, हे जल देवता, आप ही जीवन हो आपका, मैं, हम भी होवन हर देवता है, आपको भी देवता कहते हैं, आओ हम आपसे हाथ मिलाए। हमारे वाइब्रेशन उन तक पहुंचने चाहिए। इसका एक उदाहरण दे के समाप्त करता हूं कि हम लोगों का पर्यावरण अभियान निकल रहा था तो कन्नानूर एक जगह है उधर केरल में, तो वहां पर उस दिन था और यहां पर 96 वगैरह की कुछ बात है, बाबा की मुरली चली यहां पर, ये प्रकृति के ऊपर बहुत मुरलियां चली हैं, कैसे अंत समय सफाया होगा, कैसे एक एक तत्व क्या क्या कार्य करेगा। उसमें बाबा ने कहा, आप मानो जल देवता को, तो उनको कहो को आओ हम शेक हैंड करें, मैं होवनहार देवता, आप भी जल देवता हो, आइए हम दोनों मिल करके इस पृथ्वी को पावन बनाएं, सतो प्रधान बनाएं, शेक हैंड करें, बाबा ने बोला था। अब वो आपके चरण स्पर्श करने के लिए आएगा। तो हम लोगों ने ये करके सुन के मुरली, उसी दिन मुरली सुनी शाम को वहां पर कन्नानूर में, और अगले दिन के लिए प्रोग्राम बनाया। कल सुबह 4 बजे हम समुद्र के किनारे, वो समुद्र के किनारे बसा शहर है, तो वहां जाएंगे और वहां पर कल जाके हम सब योग करेंगे। तो हमारे अभियान के 12 सदस्य थे करीब और 4-5 बहनें थी, हम एक तो 15-16 व्यक्ति समुद्र के किनारे सुबह 4:15 बजे पहुंच गए। बहुत दूर पानी था, जल, और काफी दूर तक रेत, और वो हम लोग बहुत दूर पहुंचे, जल एकदम शांत था, कोई भी लहर एक भी नहीं थी, और हम सब लोग योग किया जैसा बाबा ने उसमें जैसे कमेंट्री दे करके योग कराया हो, तो मतलब मैं कई लाइनें बाबा ने ऐसे बोली थी। तो बस ये जल देवता, अगर आप तक हमारे वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं, हमारे संकल्प पहुंच रहे हैं, तो आप आओ और ये होवनहार देवताओं के चरण स्पर्श करके जाओ, हम दोनों ही मिलकर के इस सृष्टि को स्वर्ग बनाए, सतो प्रधान बनाए। बस ऐसा करके वो योग करते रहे, 4 बजे, 4:15, 4:30, 4:45, 5 बजने में 5 मिनट, कुछ भी नहीं, शांति से योग करते रहे। फिर एकाएक पता नहीं कहां से ऐसी लहर आई तेजी से, समुद्र का पानी, वो पूरा इतनी तेज लहर आई, जहां हम सब लोग बैठे हुए थे वहां सबके चरण स्पर्श करके वो जल जैसे चला गया। ऐसे ये चीज हमने कहां से ली थी, हमें वेदांति बहन वगैरह ने बताया था, अफ्रीका में ना, वो वहां पर नमक बनाने का गरीब देश है, तो वहां समुद्र के किनारे वो गड्ढा कर लेते हैं जब ज्वार भाटा आता है, जब पानी आता है, भर्ती होती है तो पानी भर जाता है, और जब सूर्य की किरणें होती हैं तो पानी उड़ जाता है और नमक बच जाता है। तो वहां के बेचारे गरीब गांव वाले आके कहते थे कि बहन जी, आप लोग रोज शाम को आते हो, देवी लगते हो सफेद कपड़ों में, हमारी तरफ से भगवान को ये रिक्वेस्ट करो। पिछले 3 साल से ये ऐसी भर्ती नहीं आ रही है समुद्र में, और पानी भर ही नहीं रहा है यहाँ, और हम नमक इसी पर ही हमारा जीवन यापन होता है, नमक बनाते हैं बेचते हैं, लेकिन हम बना ही नहीं पा रहे हैं और हम गरीब लोग हैं। तो बहनों ने बताया, अभी देखो भगवान को तो आप भी कह सकते हो, हम भी, लेकिन हम, आप बोल रहे हो तो आपकी याचिका भेज देंगे। लेकिन और तब बहनों ने भी योग किया, जो भी उसमें किया हो बाबा को रिक्वेस्ट किया, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही समुद्र में इतनी भर्ती आई ना, तो बस वो बहुत बड़े बड़े गड्ढे सब भर गए और बहुत नमक उन्होंने बनाया और बहुत बेचा। उसके बाद वो लोग आए बहनों के पास, उनकी आरती करी, पूजा उतारी और ये सब करके कि आपके कारण ही हम लोगों का ये धंधा चल सका, जो हमारा जीवन यापन। भाव क्या है कि ये तत्वों को हम चैतन्य देवता समझकर, जिनको आज तक हम कहते हैं जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता आदि आदि, उनके साथ वार्तालाप करके उनको संस्कारों के साथ अपने संस्कार मैच करते चलेंगे तो विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति, ओम शांति। आकाश का क्या विशेष गुण है? विशालता। ऐसे ही हमारा हृदय भी इतना विशाल हो, विशालता का क्या प्रतीक है? मैं कहूं मेरा हृदय बहुत विशाल है, उसका वो क्या है प्रमाण? नहीं, लिविंग बॉडी ने कौन सा गुण? क्षमा का गुण। दूसरे व्यक्ति हो, हम अक्सर करके क्षमा नहीं कर पाते। किसी ने हमारे साथ अच्छा है उसके साथ तो अच्छा है, जिसने खराब किया है बार बार याद आता रहेगा, बदला मुझे भी मौका मिला, मैं भी इसे देख लूंगा, ऐसा करके बदले की भावना की बात होती है। लेकिन क्षमा, ब्रह्मा बाबा के साथ भी रहे, बाबा के साथ भी देखा, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती थी, बस बाबा भूल जाते थे। हृदय की विशालता, और उससे फायदा क्या होगा? अगर हृदय की विशालता क्षमा करते रहे, आप देखो मदर टेरेसा है, गौतम बुद्ध है, महावीर स्वामी है, जो भी महान आत्माएं होके गई हैं किसी भी धर्म की, उनमें क्षमा का गुण विशेष होता है। इसीलिए कोई कुछ भी करे, मुझे क्षमा करते चलना है, मुझे उसके प्रति कोई निगेटिविटी नहीं रखनी है। तो ये जीवन में अगर रहेगा तो इससे फायदा क्या होगा? अंत समय आकाश मार्ग से आने वाली जो भी प्रॉब्लम होंगी, रॉकेट, बम, मिसाइल, वो जितने भी होंगे, क्लाउड बर्स्ट जो उधर आजकल कई जगह सुनने में आता है, वो मृत्यु का कारण बने, उन सब से हम सेफ रहेंगे अगर ये आकाश की विशालता धारण करके हमने आकाश को अपना मित्र बना लिया। तो फिर समय पर ऑटोमेटिकली हमें टचिंग होगी और उस प्रॉब्लम से बच जाएंगे। तो आकाश का ये गुण है। थैंक्स बहन जी, आपने एक्स्ट्रा टाइम दिया।
आपको भी बहुत बहुत थैंक्स। जो भी तत्वों के गुण हैं, उन गुणों को हम अपना गुण बना लें, उनके साथ तालमेल बिठा लें, तो काफी हद तक हम उन प्रकृति के तत्वों को जीत सकते हैं। बहुत अच्छे उदाहरण देकर के आपने हमें ये विषय को सरलता से स्पष्ट किया है, और मैं समझती हूँ आज से ही सब पुरुषार्थ करना शुरू कर देंगे, प्रकृति के तत्वों को भी योगदान जरूर देंगे। अभी 2 दिन और हैं यहाँ भट्टी में, तो जब भी योग करें तो साथ साथ इसमें भी इसको ऐड कर लें।
बनता इन्हीं से अंबर है नीला
जो